नमस्कार श्रोताओ, छिंदवाड़ा वाले से आपका दोस्त योगेश। हमारा आज का विषय है गर्भवती महिलाओं और बच्चों को दूषित पानी से क्या क्या असर पड़ता है, क्या प्रभावित होता है। पानी में लौह तत्व, ऑर्गेनिक और न जाने ऐसे कई अपशिष्ट पदार्थ आ जाते हैं और इसी को कारण गर्भवती महिलाएं और छोटे बच्चों को दूषित पानी से कुपोषित, शिशुओं का समय से पहले जन्म होना और न जाने ऐसी कई बीमारियां हो जाती हैं जिसके कारण बच्चे कुपोषित जन्म लेते हैं। समय से पहले बच्चों का जन्म होता है। आज हमारे साथ एक छात्र रोशन जी जुड़े हुए। रोशन जी, मोबाइल वाले पे स्वागत है आपका।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी।
सर, क्या आपके परिवार में या आपके आसपास, आपके परिवेश में गर्भवती महिला हो या फिर नवजात शिशु हो या फिर छोटे बच्चे, तो उन्हें पीने के पानी के साफ करने के लिए क्या, किस प्रकार से, क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं पानी को स्वच्छता स्वच्छ करने के लिए?
जी, हमारे इधर जो छोटे बच्चे लेकिन छोटे बच्चे लेकिन हमारे यहाँ ज्यादातर इधर हमारे इलाके में गर्भवती महिलाएं नहीं है। उनको जो जो जल का इस्तेमाल करते हैं, मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि वे जल को गर्म करके पिए। जल जो आता है उसमें कई सारे दूषित जल जो आता है उसमें कई सारे जीवाणु होते हैं। जो जीवाणु हमारे जल के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करके हमें नुकसान पहुंचाते हैं। यदि हम उसे गर्म करें और उसके उसका सेवन करें तो जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते।
क्या एक डॉक्टर जब शिशु हो या बच्चों को परामर्श देते हैं कि बच्चों को साफ पानी पिला दें, तो ऐसी कौन सी व्यवस्था है या अपनानी चाहिए ताकि बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को स्वच्छ पानी मिल सके?
जी, उन्हें हमें गर्भवती ज्यादातर तो बच्चों के अलावा गर्भवती महिलाओं को स्वच्छ पानी देना चाहिए क्योंकि उनके अंदर एक जीवन फलता है। और गर्भवती महिलाओं को जैसे कि मैंने पहले बताया कि गर्म पानी पीना चाहिए, उसी तरह गर्म पानी देना चाहिए। जैसे जीवाणु अगर हमारे शरीर में वो दूषित पानी से प्रवेश कर जाते हैं तो उसे कृमि होने का खतरा बना रहता है। कृमि होने से बच्चे कभी कभी विकलांग पैदा होते हैं या मर जाते हैं, या माँ और बेटे दोनों को प्रसव के दौरान मृत्यु उनके जान को खतरा होता है।
आप किस तरीके से पानी साफ करके उसका उपयोग करते हैं?
जी, हम पहले पानी को गर्म कर लेते हैं और उसे छान के फिर पी लेते हैं।
आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग हो, आंगनवाड़ी केंद्र हो, ANM और आशा कार्यकर्ता हो, तो वे किस तरीके की पानी को साफ रखने की प्रक्रिया के बारे में और इसके महत्व को लेकर क्या जानकारी आपके क्षेत्र में दी जाती है?
जी, वो RO का पानी इस्तेमाल करते हैं। वो पानी को गर्म नहीं करते क्योंकि इसमें ज्यादा समय लगता है। RO के पानी में जैसे वो भी शुद्ध होता है और हमारे इधर वही बच्चों को पिलाया जाता है और आंगनवाड़ी केंद्रों, स्वास्थ्य केंद्रों में हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था है।
आप हमें ये बताइए कि आपके क्षेत्र में, आपके परिवेश में आप कौन कौन से स्रोतों का पानी के यूज करते हैं, जैसे कि बोरवेल हो, कुएं हो, तालाब हो और न जाने अन्य अन्य साधनों से जो पानी का उपयोग करते हैं, तो किस साधनों का उपयोग करते हैं और क्या माध्यम है इसका?
जी, हमारे जो क्षेत्र में वह कुएं का पानी सभी गांव वाले पीते हैं। कुएं से पानी सभी गांव वाले की आपूर्ति होती है। नल तो वैसे आता है लेकिन वो ज्यादा मतलब उतना पानी नहीं दे पाता, लेकिन हमारे यहाँ एक कुआ है उसी से सभी के लिए वही पानी का एक स्रोत है।
अभी हाल ही में देखा होगा आपने कि राजस्थान में भी एक पाली जिला है, वहां पर चार चार पांच पांच किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं तालाबों के किनारे गड्ढे करके, उसका यानी एक निश्चित मात्रा में उस शुद्धिकरण को लेकर गड्ढे करते हैं, उससे आधे पानी लेकर आते हैं। तो उनके लिए पानी शुद्धिकरण को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे आप, क्योंकि वहां पर तो पानी पीने के लिए भी अभी दूर जाना पड़ रहा है, तो पानी उपलब्ध हो इसके लिए भी क्या करना चाहिए और पानी उनके क्षेत्र में उपलब्ध के साथ साथ पानी को साफ करके किस तरह पिया जाए, क्या प्रक्रिया अपनाई चाहिए उस?
जी उन लोगों को वहां की सरकार को उसके लिए बोलना चाहिए, क्योंकि वे लोग जो इतने दूर जाकर पानी लाते हैं और गड्ढों से कभी कभी यहाँ से वहां से, तो उसमें उस पानी में कई सारे जीवाणु आते हैं। और उधर जो कोई शिक्षित रहा तो वो पानी गर्म करेंगे और उसके बारे में सोचेंगे, लेकिन जो अशिक्षित लोग हैं उनका क्या, वह सरकार को उनके बारे में सोचना चाहिए और उनके द्वारा सरकार को उन तक पानी पहुंचाना चाहिए, और जो उन्हें जल के प्रति जागृत करना चाहिए, जल के शुद्धिकरण के बताना चाहिए, क्योंकि जल जो है हमारे भोजन का नहीं, हमारे शरीर का भी, शरीर के लिए भी बहुत तो उपयोगी है। अगर हम भोजन ना करें तो हम एक दो हफ्ते तक, 2-3 महीने तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन हमें पानी ना दिया जाए तो 1 महीने भी हम जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए पानी की आवश्यकता हमारे शरीर को है, और वैसे तो हमारे शरीर में 90% तो पानी ही होता है, और उन लोगों को जो इतनी दूर से पानी लाते हैं उनको बहुत तकलीफ होती होंगी, क्योंकि इतनी दूर से पानी लाना, आने जाने में बहुत मेहनत लग जाती होंगी।
अभी फिलहाल में ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या को लेकर बहुत बड़ी समस्या है। जमीन का भूगर्भीय जलस्तर नीचे जा रहा है और अन्य संसाधन भी अपने दम तोड़ रहे हैं, चाहे कुएं हो, ट्यूबवेल हो, हैंडपंप हो। तो ऐसी परिस्थितियां आज के परिवेश में सामने आ रही है, क्योंकि ग्रीष्मकाल चल रहा है, दिन प्रतिदिन तापमान बढ़ रहा है। तो इसके लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए ताकि वर्तमान में आने वाले दिनों में ऐसी परिस्थिति सामने न आए, इसके लिए आज से क्या तैयारी की जानी चाहिए?
जी, जैसा कि आपने बताया कि अभी ग्रीष्म काल चल रहा है, इसलिए पानी का भूगर्भीय जल स्तर घटता जा रहा है, ये होता है, किंतु ये जो भू स्तर घटता जा रहा है वो हमारी वजह से घटता जा रहा है, क्योंकि
जी
हम जो वर्षा का जल जो जमीन सोख लेती है और भूमिगत जल के रूप में उसे बचाती है, आज हमने उसे कुआं और ट्यूबवेलों तथा हेडपंपों से बाहर निकाल लिया है। तो ऐसा हमें जो ग्रीष्मकाल जैसे ही शुरू होता है वैसे तापमान बढ़ता है और पानी की जो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो भी तेज हो जाती है। इसलिए हमें जैसे वर्षा काल में जिस तरह पानी का इस्तेमाल करते हैं, उस तरह हमें ग्रीष्म काल में पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पानी का इस्तेमाल सिर्फ हमें अपने जरूरी कामों जैसे नहाना, खाने बनाना, पीना, इसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए, अन्य कामों में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और उसके लिए ज्यादा से ज्यादा ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि पानी ज्यादा से ज्यादा बचे, इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा इसके बारे में।
तो ये थे रोशन जी, जिन्होंने मोबाइल वाणी के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और बच्चों को दूषित पानी से क्या क्या प्रभाव पड़ता है, उनके क्षेत्र में किस किस संसाधनों से पानी का उपयोग किया जाता है, चाहे आशा कार्यकर्ता हो या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, किस तरीके से उनके क्षेत्र में पानी साफ पीने को लेकर किस तरीके की जानकारी प्रदान की जा रही है, साथ ही उनके क्षेत्र में अभी पानी को लेकर क्या क्या स्थिति है, इस बारे में जानकारी साझा की। रोशन जी, मोबाइल वाले का समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद सर।
छिंदवाड़ा वाले सबका दोस्त योगेश।